उद्धारकर्ता मसीह यीशु के नाम में आपको हमारा प्रेम भरा नमस्कार। कार्यक्रम सत्य वचन लेकर एक बार फिर हम आपकी सेवा में उपस्थित हैं। श्रोताओ, इन दिनों में हम पवित्र शास्त्र बाइबल के पुराने नियम में से अय्यूब नामक पुस्तक का विस्तार से अध्ययन कर रहे हैं। इस पुस्तक का मुख्य विषय है अय्यूब की पीड़ाएं और समस्याएं। हमें विश्वास है श्रोताओ कि इस पुस्तक के द्वारा आपको आत्मिक ज्ञान मिल रहा है। तो आइए आज के इस अध्ययन में शामिल हों, लेकिन इससे पहले सुनते हैं एक मधुर संगीत रचना।
यीशु को तू अपने जीवन में अपना मित बना ले, यीशु को तू अपने जीवन में अपना मित बना ले। छोड़ दे ये दुनिया है सुनहरी, दुनिया से मन फिरा ले, होगा तेरा भला, होगा तेरा भला। ख्वाबों में जो खोया है जाग जरा मत वाले, ख्वाबों में जो खोया है जाग जरा मत वाले।
प्रिय मित्र, प्रभु यीशु के पवित्र और सामर्थी नाम में आप सबको मेरा नमस्कार। मैं कुशल पूर्वक हूँ और मुझे आशा है कि आप सब भी कुशल पूर्वक हैं और परमेश्वर की निकटता में रह करके आनंदित हैं। और आज फिर से एक बार प्रतिदिन की तरह परमेश्वर के वचन में से सुनने और सीखने के लिए तैयार बैठे हैं। मैं आप सबका इस कार्यक्रम में स्वागत करता हूँ और आशा करता हूँ कि आज हम अवश्य ही नई बातों को सीखेंगे। अपने उन नए मित्रों का भी स्वागत करता हूं जो पहली बार हमारे इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं। मैं आपको बता देना चाहता हूं कि हम सब इन दिनों बाइबल में से अय्यूब नामक पुस्तक का अध्ययन कर रहे हैं। पिछले अध्ययन में हम देख रहे थे कि परमेश्वर किस प्रकार अपने लोगों को अपनी निकटता में रखता है। हमने देखा कि अय्यूब के जीवन में तीन मित्र थे और वे तीनों अय्यूब के पास इसलिए आए ताकि उसकी बीमारी के समय उसको सांत्वना दे, परंतु वे तीनों उसे सांत्वना नहीं दे पाए। तब एलीहू उनसे बातचीत करता है। तो इससे पहले कि आज हम आगे बढ़ें, आइए हम सब प्रार्थना करें और परमेश्वर से आज के अध्ययन के लिए सहायता मांगें। हमारे सामर्थ्य और जीत पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं आज के सुंदर समय के लिए जिसे आपने हम सबके जीवन में दिया है ताकि एक साथ बैठकर फिर से आपके जीवित और सच्चे वचन का अध्ययन कर सकें। इस समय जब हम आपके वचन को अय्यूब की पुस्तक में से सुनते हैं, मनन चिंतन करते हैं, विचार विमर्श करते हैं, हमारी प्रार्थना है कि आप हमें से प्रत्येक को अपनी बुद्धि, ज्ञान और समझ प्रदान कीजिए ताकि जो कुछ भी आज हम सुनते हैं अपने जीवन में उसे ग्रहण कर सकें और उसके अनुसार से चल सकें। हमारी प्रार्थना उन भाई बहनों के लिए है जो बीमार हैं, निराश हैं, चिंतित हैं, परेशान हैं या किसी प्रकार के दबाव और तनाव में पड़े हुए हैं। आप हर एक की सहायता करें ताकि एक एक जीवन आप में बलवंत किया जाए, एक एक जन इस बात को समझ सके कि आप प्रत्येक को प्रेम करते हैं, हर एक के जीवन को शांति और आनंद देना चाहते हैं। हाँ प्रभु, इस समय हमारे जीवन को, हम में से प्रत्येक को आपके हाथ में सौंप देते हैं। बड़े धन्यवाद के साथ प्रार्थना अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। मित्रों, आइए आज आप मेरे साथ अय्यूब की पुस्तक उसके 34 अध्याय को निकाल लीजिए। हम अपने अध्ययन में आगे बढ़ेंगे और अय्यूब की पुस्तक उसके 34 अध्याय उसके 12 पद को पढ़ेंगे। लिखा है, निसंदेह परमेश्वर दुष्टता नहीं करता और न सर्वशक्तिमान अन्याय करता है। ध्यान दीजिए, आप इसे लिख कर रख लें कि परमेश्वर दुष्टता के काम कभी भी नहीं करता है। वह किसी भी गलत काम की अनुमति नहीं देता है। यदि आप पुराने नियम में अमोरियों के विनाश की आज्ञा देने में परमेश्वर का दोष देखते हैं तो यह आपका सौभाग्य है, परंतु इससे परमेश्वर गलत तो नहीं हो सकता। जी हाँ, वह सर्वथा उचित था। हो सकता है आप कहें, मेरा विचार ऐसा नहीं है। संभवतः मेरा विचार भी ऐसा नहीं है, परंतु यह जानता हूं कि परमेश्वर ने उन्हें 400 वर्ष अनुग्रह के अधीन रखा और उन्हें मन परिवर्तन का अवसर दिया, इसके बाद ही उनका सर्वनाश किया। परमेश्वर सदा सही है। इस दृष्टिकोण से आप तर्क करें तो आपको आशीष भी मिल सकता है। मेरे मित्रों, मानव स्वभाव में सत्य की अपेक्षा अनुभव के आधार पर सोचना है। यही कारण है कि हम इसे बहुत कम सच्चाई को समझ पाते हैं। यूहन्ना रचित सुसमाचार 14 अध्याय उसके 6 पद में हमारे प्रभु यीशु मसीह ने कहा, सत्य मैं ही हूं। अतः जब पिलातुस ने पूछा कि सत्य क्या है, यूहन्ना उसके 18 अध्याय के 38 पद में लिखा है, तो सत्य उसके सामने ही खड़ा था, अर्थात प्रभु यीशु ही सत्य है। हमें अनुभव की अपेक्षा सत्य के आधार पर सोचना चाहिए। परमेश्वर ऐसा ही करता है। आइए हम पढ़ें अय्यूब की पुस्तक 34 अध्याय उसके 13 और 14 पद में लिखा है, किसने पृथ्वी को उसके हाथ में सौंप दिया, या किसने सारे जगत का प्रबंध किया? यदि वह मनुष्य से अपना मन हटाए और अपना आत्मा और श्वास अपने ही में समेट ले। मेरे प्रियो, यहाँ मुख्य बात यह कही जाती है कि परमेश्वर सुधि लेता है। वह मनुष्य के लिए चिंतित रहता है जो सच है। अय्यूब की पुस्तक 34 अध्याय उसके 31 पद में हम पढ़ते हैं, क्या किसी ने कभी परमेश्वर से कहा, मैंने दंड सहा, अब मैं भविष्य में बुराई न करूंगा? यदि परमेश्वर ने आपकी ताड़ना की है तो आपको उससे शिक्षा लेना है और अपने पुराने मार्गों पर नहीं चलना है। अति संभव है कि परमेश्वर आपके जीवन में किसी बात को विकसित करने के प्रयास में, वह आपके जीवन में तब तक कुछ नहीं आने देगा जब तक कि उसका उद्देश्य पूरा ना हो जाए। अय्यूब की पुस्तक 34 अध्याय के 32 पद में लिखा है, जो कुछ मुझे नहीं सूझता वह तू मुझे सिखा दे, और यदि मैंने टेढ़ा काम किया हो तो भविष्य में वैसा ना करूंगा। यदि आपने अपराध किया है और आप परमेश्वर की ताड़ना का उद्देश्य समझ रहे हैं कि वह आपको पाप से दूर रखना चाहता है, तो परमेश्वर के लिए शिक्षा ले लें और पापों से मन फिराएं। अय्यूब की पुस्तक 34 अध्याय उसके 34 और 35 पद में आगे हम पढ़ते हैं, सब ज्ञानी पुरुष वरन जितने बुद्धिमान मेरी सुनते हैं, वे मुझसे कहेंगे, अय्यूब ज्ञान की बातें नहीं कहता और ना उसके वचन समझ के साथ होते हैं। मेरे मित्रों, अय्यूब के बारे में जो कहा गया वह हम में से अधिकांश के लिए भी कहा जा सकता है। हम बहुत बातें करते हैं, परंतु अधिकतर अज्ञान और निर्बुद्धि की बातें करते हैं। उनमें से अनेकों के पास PhD है, उपलब्धियां ज्ञान और बुद्धि का दावा नहीं कर सकती, क्योंकि आज हम वर्तमान समय में देखते हैं कि बहुतों के पास झूठी डिग्रियां हैं और उनके पास ज्ञान और बुद्धि की कमी है। अय्यूब की पुस्तक 34 अध्याय उसके 36 और 37 पद में लिखा है, भला होता कि अय्यूब अंत तक परीक्षा में रहता, क्योंकि उसने अनर्थियों के से उत्तर दिए हैं, क्योंकि वह अपने पाप के साथ साथ विद्रोह भी बढ़ाता है और हमारे बीच ताली बजाता है और परमेश्वर के विरुद्ध बहुत सी बातें कहता है। मेरे मित्रों, हम देखते हैं कि एलीहू के कहने का अर्थ है कि परमेश्वर अय्यूब की परीक्षा तब तक ले जब तक कि वह अपने बचाव की अपेक्षा परमेश्वर के पक्ष में बातें करे। परमेश्वर अय्यूब को सबक सिखा रहा है। मेरे प्रियो, कई बार मेरे और आपके जीवन में भी कुछ ऐसे बातें होती है जिसको हम सही समझ बैठते हैं और उसमें अटल बने रहते हैं और हम कोशिश करते हैं कि हम सही हैं, बाकी सब लोग गलत हैं, और उस पर हम विचार नहीं करते, जिसके कारण से हमारे परिवार में कलह, मुसीबत और कठिनाइयां उत्पन्न हो जाती हैं और अंततः हम देखते हैं कि कई परिवार टूट भी जाते हैं। यहाँ पर हम देखते हैं कि अय्यूब में भी कुछ ऐसी ही बातें हैं, परंतु परमेश्वर उसे सिखाना चाहता है। यहाँ पर अध्याय 34 समाप्त होता है। अब हम आगे बढ़ेंगे और देखेंगे अध्याय 35 में। 35 उसके 1 और 2 पद में लिखा है, फिर एलीहू इस प्रकार और भी कहता गया, क्या तू इसे अपना हक समझता है? क्या तू दावा करता है कि तेरा धर्म परमेश्वर के धर्म से अधिक है? अय्यूब यह कहता है कि वह धर्मी होकर भी कष्ट उठा रहा है, तो इसका अर्थ यह हुआ कि परमेश्वर गलत है। उसके तर्क से यही निष्कर्ष निकलता है और इसी बात को एलीहू उसके सम्मुख में रखता है। आगे हम पढ़ते हैं अय्यूब 35 अध्याय उसके 3 से 6 पद में, जो तू कहता है मुझे इससे क्या लाभ, मुझे पापी होने में और ना होने में कौन सा अधिक अंतर है? मैं तुझे और तेरे साथियों को भी एक संग उत्तर देता हूँ, आकाश की ओर दृष्टि करके देख और आकाश मंडल को ताक जो तुझसे ऊंचा है। यदि तूने पाप किया है तो परमेश्वर का क्या बिगड़ता है? यदि तेरे अपराध बहुत बढ़ जाएं तो भी तू उसका क्या कर लेगा? मेरे प्रियो, यही तो एक प्रश्न है जो अय्यूब परमेश्वर से पूछ रहा था, मेरा यह छोटा सा जीवन परमेश्वर के मन को नहीं पिघला रहा है। इन सब बातों का विषय यह है कि परमेश्वर का मन पिघलता है। पाप एक अनंत सत्य है। अब्राहम ने हाजिरा उसकी दासी के संबंध में पाप किया और संसार आज तक मध्य एशिया में उसका दुष्परिणाम भोग रहा है। उसने सारा के कहने पर यह काम किया था, परंतु गलती दोनों की ही थी। वे कितने गलत थे, उनकी गलती का परिणाम 400 वर्षों तक रहा है। पाप एक भयानक बात है और परमेश्वर को व्याकुल कर देता है। अय्यूब की पुस्तक 35 अध्याय उसके 8 पद में लिखा हुआ है, तेरी दुष्टता का फल तुझ जैसे पुरुष के लिए है और तेरे धर्म का फल भी मनुष्य मात्र के लिए है। ध्यान दीजिए कि आप सदा ही एक गवाही हैं। आप कुछ भी हो, आप एक प्रचारक हैं। जी हाँ, एक शराबी की माता ने मुझसे कहा कि मैं उसके पुत्र से बात करूं। एक दिन जब वह सड़क पर झूमता हुआ जा रहा था, तब मैं उसे पकड़कर अपने अध्ययन कक्ष में ले आया। वहां उसे बैठाकर मैंने उससे कहा कि वह कैसा है कि वह घिनौना और तुच्छ व्यक्ति है और अपने माता के लिए अपमान का कारण है। उसके कारण उसकी माता कितना दुख उठाती है। वह चुप बैठकर सुनता रहा। मैंने उससे कहा, आप अपने जीवन से प्रचार करते हैं, आप एक प्रचारक भी हैं। वह मुझसे लड़ने के लिए खड़ा हो गया। मैं उसे कुछ भी कहूं तो वह सह लेगा, परंतु उसे प्रचारक ना कहूं। मेरे मित्रों, आप एक प्रचारक हैं। आपका दुराचार किसी को कष्ट पहुंचाता है और आपका सदाचार किसी के लिए सहायक सिद्ध होता है और किसी के लिए आशीष का कारण हो सकता है। अय्यूब की पुस्तक 35 अध्याय उसके 9 और 10 पद में लिखा है, बहुत अंधेर होने के कारण वे चिल्लाते हैं और बलवान के बाहुबल के कारण वे दोहाई देते हैं, तो भी कोई यह नहीं कहता, मेरा सृजने वाला परमेश्वर कहाँ है जो रात में भी गीत गवाता है। मेरे मित्रों, यह कैसी अद्भुत बात है। परमेश्वर ही है जो रात में हमें रात में गीत गवाता है। आनंद का एकमात्र स्थान परमेश्वर के पास है। क्या आपने कभी इफिसियों के पत्र 1 अध्याय उसके 3 पद पर ध्यान दिया है? लिखा है, हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर और पिता का धन्यवाद हो। यहाँ धन्यवाद का अर्थ क्या है? आनंद परमेश्वर का आनंद है और वह चाहता है कि हम आनंद से परिपूर्ण हो। मूसा जब पर्वत पर से उतरा तब उसका चेहरा चमक रहा था, क्योंकि क्षमा का प्रावधान हो गया था। अब पापों के बलिदान का प्रबंध किया जा चुका था और परमेश्वर अब मनुष्य के साथ अनुग्रह से पूर्ण व्यवहार करेगा। मेरे मित्रों, यूहन्ना अपनी पहली पत्री के अध्याय 1 और पद 4 में कहता है, ये बातें हम इसलिए लिखते हैं कि हमारा आनंद पूरा हो जाए। परमेश्वर ही तो है जो रात में भी गीत गवाता है। मेरे मित्र, आप रात के क्लब में जाते हैं, वहां गाने सुनते हैं और सुबह आपका सिर भारी होता है, परंतु परमेश्वर आपको आनंद विभोर कर देता है। यह बहुत महत्वपूर्ण बात है। एलिहू युगों पूर्व पितरों के युग में इस सत्य को जानता था। जी हाँ, एलिहू के विवाद के अंत में हम देखेंगे कि परमेश्वर अय्यूब पर प्रकट होता है। आंधी आएगी और उसमें से परमेश्वर अय्यूब से बातें करेगा। जीवन की आंधियों में से परमेश्वर आपसे और मुझसे शांति की बातें करता है। ओह, हम अपने और परमेश्वर के बीच परिस्थितियों को ना आने दें। जब हम परिस्थितियों को नहीं आने देते हैं तो निश्चय जानिए कि परमेश्वर आपसे बात करना चाहता है, आपके जीवन को सुधारना चाहता है ताकि आप उसके आनंद को प्राप्त कर सकें। हम देखते हैं कि परमेश्वर एक महान शिक्षक है। मेरे मित्रों, यहाँ पर अध्याय 35 समाप्त होता है और अब हम देखेंगे अध्याय 36 उसके 1 और 2 पद में लिखा है, फिर एलिहो ने यह भी कहा, कुछ ठहरा रह और मैं तुझको समझाऊंगा, क्योंकि परमेश्वर के पक्ष में मुझे कुछ और भी कहना है। एलिहू परमेश्वर के पक्ष में विवाद कर रहा है, उसमें परमेश्वर का ज्ञान कम है। हम सब में भी परमेश्वर के ज्ञान की कमी है। हम असीम परमेश्वर की बातें कर रहे हैं और हमारे पास हर बात का उत्तर नहीं है, जैसा कि परमेश्वर के पास हम सब के लिए है। आज अनेकों की यही एक समस्या है। मुझे किसी ने कहा, मैं विश्वास कर सकता हूँ। मैंने उससे पूछा, वह क्या है जिस पर आप विश्वास नहीं कर पाते? क्या आप विश्वास करते हैं कि प्रभु यीशु क्रूस पर मरा और फिर जी उठा? उसने कहा, जी हाँ, वह विश्वास करता था। मैंने कहा, तो फिर आप उसमें विश्वास क्यों नहीं कर पाते? बहुत कुछ और भी है, सृष्टि, योना, नूह और चमत्कार। उसकी व्यक्तिगत समस्याएं भी अनेक थी। उसने मुझे चुनौती देते हुए कहा, आप कहते हैं कि हम पापमग्न अविश्वासी हैं, परंतु मैं तो विश्वासी बनना चाहता हूँ। क्या मैं कह सकता हूँ कि वह पाप कर रहा था? उसका पाप था वह जो नहीं जानता है उसके द्वारा वह जो जानता था उसे बाधित कर रहा था। मेरे मित्रों, यदि आप मसीह में विश्वास के विषय पर्याप्त जानकारी रखते हैं तो ये अन्य बातें स्वयं ही क्रमबद्ध हो जाएंगी। जी हाँ, मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ। मैं लिखते समय कुर्सी पर बैठता हूँ, परंतु मैं उस कुर्सी के बारे में कुछ नहीं जानता, जैसे उसे किस कारीगर ने बनाया है, किस कंपनी ने बेचा है, उसकी सामग्री क्या है, कैसी लकड़ी है, कैसा आवरण है आदि। कहने का अर्थ है कि मैं उस कुर्सी के बारे में बहुत कम जानता हूँ, परंतु मैं इतना अवश्य जानता हूँ कि उस पर विश्वास के साथ मैं बैठ जाऊंगा तो यह नहीं टूटेगा और मुझे टिकाएगा। क्या आप जानते हैं कि मसीह आपके लिए मरा? क्या आप जानते हैं कि वह फिर जी उठा? फिर सब ठीक है, बस अब उसमें विश्वास करिए और वह आपका मुक्तिदाता है। आपके अन्य सब संदेह यथा संभव स्वयं ही दूर हो जाएंगे, यह मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ। जी हाँ, यदि मेरे लिए आवश्यक हो कि मैं कुर्सी के बारे में अधिक जानकारी रखूं, तो मैं जानकारी अवश्य ही प्राप्त कर सकता हूँ, परंतु मेरे लिए इतना ही जानना पर्याप्त है कि मैं उस पर बैठ जाऊं तो यह नहीं टूटेगी। मैं हवाई जहाज के विषय में बहुत ही कम जानता हूँ। मैं उससे डरता भी हूँ, परंतु मैं उसमें चढ़कर या बैठकर जाऊं तो वह मुझे नहीं गिराएगा। विश्वास करके स्वयं को उसे सौंप देना है। हम प्रायः जो नहीं जानते उसके कारण जो हम जानते हैं उसमें बाधा उत्पन्न करते हैं। मेरे प्रियो, हम एलिहू का विवाद सुन रहे हैं। हम देखेंगे कि एलिहू अपने ज्ञान में बहुत सीमित है। तो आइए हम आगे बढ़ें और पढ़ें अय्यूब की पुस्तक 36 अध्याय उसका 3 पद। लिखा है, मैं अपने ज्ञान की बात दूर से ले आऊंगा और अपने सृजनहार को धर्मी ठहराऊंगा। वर्षों बाद पौलुस भी यही कहता है रोमियो के पत्री 9 अध्याय उसके 14 पद में, क्या परमेश्वर के यहाँ अन्याय है? कदापि नहीं। परमेश्वर जो कुछ करता है उसमें वह न्याय सम्मत है। यद्यपि यलीहू परमेश्वर को न्यायनिष्ठ कहता है, वह यह भी कहता है कि परमेश्वर इतना दूर है कि मनुष्य उसे जान नहीं पाता। प्रसंगवश इसमें सच्चाई है, परंतु आज हमें परमेश्वर से दूर करने वाली बात क्या है? देखिए एलीहू क्या कहता है, अय्यूब की पुस्तक 36 अध्याय उसके 4 पद में, क्योंकि निश्चय मेरी बातें झूठी न होगी, वह जो तेरे संग है वह पूरा ज्ञानी है, अर्थात सिद्ध ज्ञान केवल परमेश्वर में ही है। अय्यूब 36 उसके 5 से 7 पद में आगे हम पढ़ते हैं, देख परमेश्वर सामर्थी है और किसी को तुच्छ नहीं जानता, वह समझने की शक्ति में समर्थ है, वह दुष्टों को जिलाए नहीं रखता और दीनों को उनका हक देता है, वह धर्मियों से अपनी आंखें नहीं फेरता वरन उनको राजाओं के संग सदा के लिए सिंहासन पर बैठाता है और वे ऊंचे पद को प्राप्त करते हैं। उसके कहने का अर्थ है कि परमेश्वर हमसे बहुत दूर है, अतः हम उससे संपर्क नहीं कर पाते हैं। यहाँ एलीहू गलत है और आज भी अनेक जन इस संदर्भ में जो सोचते हैं गलत हैं। यशाया की पुस्तक 59 अध्याय उसके 2 पद में स्पष्ट है कि परमेश्वर की दूरी का कारण क्या है, इसलिए नहीं कि परमेश्वर महान है और हम दुष्ट या मनुष्य हैं, इसलिए नहीं कि वह अनंत है और हम नाशवान हैं। तुम्हारे अधर्म के कामों ने तुमको परमेश्वर से अलग कर दिया है। यशाया उनकी स्थिति को भी बताता है, अर्थात वर्णन करता है। यशाया के पुस्तक 59 अध्याय उसके 3 और 4 पद में हम पढ़ते हैं, तुम्हारे हाथ हत्या से और तुम्हारी उंगलियां अधर्म के कामों से अपवित्र हो गई हैं। तुम्हारे मुंह से तो झूठ और तुम्हारे जीभ से कुटिल बातें निकलती हैं। कोई धर्म के साथ नालिश नहीं करता, न कोई सच्चाई से मुकदमा लड़ता है। वे मिथ्या पर भरोसा रखते हैं और झूठी बातें बकते हैं। उसको मानो उत्पात गर्व रहता है और वे अनर्थ को जन्म देते हैं। परमेश्वर के अनुसार ये बातें मनुष्य को उससे दूर करती है। जी हाँ, हम और एक जगह पर पाते हैं जहां पर लिखा है, पवित्र बनो क्योंकि मैं पवित्र हूँ। कहने का तात्पर्य यह है कि परमेश्वर जो परम पवित्र है, हम अपवित्र रूप में उसके पास कैसे आ सकते हैं? यही दूरी मनुष्य और परमेश्वर के बीच में अलग करती है। आज हमें परमेश्वर से अलग होने का कोई कारण नहीं है। पाप की समस्या सदा के लिए सुलझ गई है। परमेश्वर मनुष्य के बीच एक ही बिचवई है, अर्थात प्रभु यीशु मसीह जो मनुष्य है। आज हम उसके द्वारा परमेश्वर के निकट आ सकते हैं। अय्यूब की पुकार यही थी कि कोई तो उसके और परमेश्वर के बीच संबंध स्थापित करे, अर्थात मध्यस्थता का काम करे। एलीहू अन्य 3 की अपेक्षा इस धारणा के निकट था, परंतु सफल नहीं हुआ। यही कारण है कि अंत में परमेश्वर को अय्यूब पर प्रकट होना पड़ा। एलीहू कहता है कि परमेश्वर एक महान शिक्षक है। मेरे प्रिय मित्र, क्या आज आप इस बात को जानते हैं कि आपको भी एक मध्यस्थता की आवश्यकता है, और यह काम सिर्फ और सिर्फ प्रभु यीशु ही कर सकता है। यदि आपको ऐसा लगता है कि आप पापी हैं और आपने बहुत अधिक पाप किया है कि आप क्षमा के काबिल या लायक भी नहीं है, परंतु यदि आपको परमेश्वर का डर या भय है, तो एक बात समझ लें कि परमेश्वर आपके लिए एक उपाय कर सकता है। यदि आप यीशु के पास आते हैं, उससे अपने गलतियों को बताते हैं और पश्चाताप करते हैं, तो निश्चय जानिए कि वह आपके पापों के लिए आपको क्षमा कर सकते हैं, क्योंकि वह हमारे पापों को लेकर क्रूस पर बलिदान हो गया। उसने अपने उस लहू को बहा दिया जो मुझे और आपको बहाना चाहिए था, मेरा और आपका बहाना चाहिए था। जी हाँ, उसने हमारे पापों को अपने ऊपर में ले लिया, वह मर गया और गाढ़ा गया, तीसरे दिन मृतकों में से फिर से जीवित हो उठा और आज भी जिंदा है, वही आपको क्षमा कर सकता है। अय्यूब को भी एक मध्यस्थता की जरूरत थी। यहाँ पर एलीहू उसके बीच में आने की कोशिश करता है, परंतु वह असफल रहा। यहाँ आपके लिए और मेरे लिए एक खुशी और आनंद का बात यह है कि प्रभु यीशु मेरा और आपका मध्यस्थ कर सकता है। मेरे प्रियो, यहाँ पर आज हमारे अध्ययन का समय समाप्त होता है। मुझे आशा है कि आज के इस अध्ययन के द्वारा आपने अवश्य ही अपने जीवन में आत्मिक लाभ को प्राप्त किया है। प्रभु आप सबकी सहायता करे एवं आप सबको आशीष प्रदान करे।
प्रिय श्रोताओ, अभी आप सुन रहे थे बाइबल अध्ययन कार्यक्रम सत्य वचन। हम आशा करते हैं कि आज के इस कार्यक्रम से आपको आत्मिक लाभ मिला होगा। यदि आप परमेश्वर के बारे में और अधिक जानना चाहते हैं, तो हमारे पास नया नियम एवं पवित्र शास्त्र बाइबल उपलब्ध है। इन्हें प्राप्त करने के लिए आप हमें इस पते पर लिख सकते हैं। कार्यक्रम सत्यवचन, TWR, पोस्ट बॉक्स नंबर 4310, नई दिल्ली 110019। पता एक बार फिर सुन लीजिए। कार्यक्रम सत्यवचन, TWR, पोस्ट बॉक्स नंबर 4310, न्यू दिल्ली 110019। और हाँ श्रोताओ, याद रखें कि पत्र लिखते समय आपका नाम और पता साफ साफ लिखा होना चाहिए। इसके अलावा आप हमसे टेलीफोन के माध्यम से भी बातचीत कर सकते हैं, जिसमें हमारे काउंसलर या सलाहकार आपको सलाह देंगे। तो नोट कीजिए, हमारा मोबाइल नंबर 9958820414। याद रखें 9958820414। और हमारा दूसरा नंबर है 09651433397। याद रहे 09651433397। इसके अलावा आप हमसे ईमेल के द्वारा भी संपर्क कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है hindittb@twr.in, hindittb@twr.in। और अब इसी के साथ हमारे कार्यक्रम का समय यहीं पर समाप्त होता है। अगले कार्यक्रम में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए, नमस्कार।
तेरी कोशिशों के बदले क्या बताऊं तुझे मिला है, तेरी कोशिशों के बदले क्या बताऊं तुझे मिला है, जिंदगी खुशी से भर दे कोई ऐसा सिलसिला है, तुझे कुछ न दे सकेगा तेरे भाग्य का सितारा, तुझे कुछ ना दे सकेगा तेरे भाग्य का सितारा, सिर्फ एक नजर उठा के देख ले लहू की धारा, तेरे पास घुल सकेंगे आज ही मसीह के द्वारा, तेरे पास घुल सकेंगे आज ही मसीह के द्वारा। कोई है आवाज जो के तेरा पीछा कर रही है,